तुम पागल हो आस्तिक, तुम खड़े खड़े किसी की भी जान ले सकते हो। मैं तो तुम्हें उसी वक्त छोड़ना चाहती थी जब पता चला कि तुम्हारा रिश्ता माफिया और अंडरवर्ल्ड से है, और आगे चलकर तुम खुद अंडरवर्ल्ड के किंग बनोगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तुम मेरी बॉडी से ऑफसेट हो चुके थे। तुम्हारी तरफ से ये सब प्यार था, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था। मुझे हमेशा से पता था कि जिस दिन ये अट्रैक्शन खत्म होगा, तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तुम पागल और सनकी इंसान हो। अगर मैं तुम्हें सामने से छोड़ती तो अपने पागलपन में तुम मेरी जान ले लेते, और मैं मरना नहीं चाहती थी। मैंने सही मौके का इंतजार किया, और वो मौका मुझे तब मिला जब हमारा कॉलेज खत्म हो गया और हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। तब तुम्हें अपनी फैमिली के प्रेशर में मुझसे रिश्ता तोड़ना पड़ा। हाँ, उस दिन मैंने नकली आंसू जरूर बहाए थे, लेकिन अंदर से मैं बहुत खुश थी कि आखिरकार मेरा तुमसे छुटकारा हुआ। उसके बाद मेरी फैमिली ने मेरी शादी मेरे हस्बैंड से करवा दी। तुम्हें पता है आस्तिक, तुमने मुझे फिजिकल सेटिस्फैक्शन दिया था, इसलिए मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ इन सब से जिंदगी नहीं काटी जा सकती। हाँ, थोड़ा सुकून और कुछ वक्त की खुशी के लिए ये सब जरूरी होता है, लेकिन असली जरूरत तो पैसा होती है, और पैसे के लिए ही मैंने अपने से दुगनी उम्र के इंसान से शादी कर ली। मेरा पति मुझे बिस्तर पर कभी खुश नहीं रख सकता था, और मुझे वो खुशी चाहिए भी नहीं थी। उसके बदले में वो मुझे ढेर सारा पैसा देता था, जिससे मैं अपनी ज़रूरतें और शौक पूरे करती थी। और फिर मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला। मुझे लगा तुम भी अब अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे। तुम्हारी बीवी के लिए अफसोस ज़रूर हुआ कि बेचारी कैसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के सपने देख रही होगी, जो इंसान इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे, मंजिलें बदल चुकी थीं, हम सफ़र भी अलग हो गए थे। मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन तुम्हें शायद अपनी ज़िंदगी से बहुत सी शिकायतें थीं। इसीलिए जब हमारी दोबारा मुलाकात हुई तो तुमने फिर से मुझे अपने साथ रखने की कोशिश की, और इस बार भी मेरा डर वही था कि अगर तुम्हें मना किया तो तुम मुझे मार डालोगे। इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ, और मुझे उनसे वो खुशी नहीं मिलती जो तुमसे मिलती है। तुम्हें लगा मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, और तुमने अपनी बीवी को धोखा देकर फिर से मेरे साथ रहना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि तुम्हारे ऊपर फैमिली का दबाव है और तुम अपनी बीवी को कभी तलाक नहीं दोगे, इसीलिए मैंने भी इस रिश्ते को एक मौके की तरह देखा। मुझे मेरे पति से पैसा मिल रहा था और तुमसे सेटिस्फैक्शन। लेकिन परेशानी तब हुई जब मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब उन्हें एक बच्चा चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए एक वारिस चाहिए। और तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ बच्चा करने वाली नहीं थी, क्योंकि तुम बाप बनने के लायक ही नहीं हो। तुम मुझे एंटी प्रेगनेंसी पिल्स दिया करते थे, लेकिन मैंने उन्हें कभी खाया ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो बच्चा चाहिए था अपने पति से। हाँ, मुझे अपना बच्चा चाहिए था, और मैं तुमसे इसकी उम्मीद कभी नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपने पति के साथ बच्चा प्लान किया। लेकिन जब मेरी प्रेगनेंसी की खबर उसे मिली तो वो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने ये खबर मीडिया में फैला दी। वरना मैं कभी तुम्हें इस बात का पता नहीं चलने देती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुमसे कहती कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ और एक साल बाद वापस आती। तुमसे छुपाने की सिर्फ एक ही वजह थी आस्तिक, क्योंकि मैं तुमसे डरती थी। मुझे डर था कि तुम मुझे मार दोगे, और मैं मरना नहीं चाहती थी। मैं बाकी इंसानों की तरह एक आम सी जिंदगी जीना चाहती थी। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुमने अपने पागलपन और दहशत से मेरे अंदर इतना डर भर दिया था कि चाहकर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाई। शादी करना, माँ बनना हर औरत का एक सामान्य सपना होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पति की उम्र क्या है, अगर वो मुझे माँ बनने का सुख दे रहा है तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं। अमायरा अपनी पूरी बात कह देती है। उसकी बातें सुनकर आस्तिक का दिल बैठ जाता है। उसके पैर जम चुके थे और आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। मतलब ये था कि अमायरा ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, वो तो सिर्फ एक फिजिकल सेटिस्फैक्शन का जरिया थी। अमायरा गहरी सांस लेकर आस्तिक की तरफ देखती है और कहती है, चले जाओ मेरी जिंदगी से। आज तक मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी, और ना कभी होगी, क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। आस्तिक की मुठ्ठियां भिंज चुकी थीं। वो गुस्से से अमायरा को देखता है और कहता है, लेकिन मैंने तो तुमसे हमेशा प्यार किया था ना। नहीं किया आस्तिक, तुमने भी मुझसे कभी प्यार नहीं किया। जो कुछ भी तुम करते थे वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ अट्रैक्शन था। प्यार तो वो होता है आस्तिक, जब प्यार हमसे दूर हो जाए तो एक पल को जान निकल जाए, लेकिन हम दोनों एक साल तक अलग रहे। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो तुम दौलत, ताकत और अपने पिता की शान और शौकत को छोड़कर मेरे पास आते और कहते कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय मेरे प्यार के, लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं किया। तुम जैसे इंसान के साथ कोई भी लड़की जीने मरने की कसम नहीं खाएगी। तुम्हारे साथ कोई भी लड़की अपनी दुनिया नहीं बसाना चाहेगी। कोई लड़की तुम्हारे लिए मरे, ऐसी लड़की अभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। अमायरा ने आस्तिक का मजाक उड़ाते हुए कहा। आस्तिक गुस्से से कांप रहा था और उंगली दिखाकर बोला, झूठ, ये सब झूठ है, तुम मतलबी और धोखेबाज हो, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी तरह नहीं है, ना वो मतलबी है और ना धोखेबाज। अमायरा की आंखें सिकुड़ जाती हैं, वो समझ नहीं पाती कि आस्तिक किसकी बात कर रहा है। तब आस्तिक ने घमंड से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा कोई और नहीं जो मुझसे प्यार करता है? मेरी बीवी है, मेरी अरुणिमा, वो मुझसे प्यार करती है, मेरी परवाह करती है। अरुणिमा का नाम सुनते ही अमायरा जोर जोर से हंसने लगती है पागलों की तरह। उसके बालों की क्लिप भी ढीली होकर गिर जाती है। क्या कहा तुमने, वो बहनजी टाइप अरुणिमा तुमसे प्यार करती है? आस्तिक का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। अमायरा फिर हंसती है और कहती है, जब से मैंने तुम्हारे और अरुणिमा के बारे में जाना है ना, एक ही चीज समझ आई है, वो तुमसे नफरत करती है, वो सिर्फ डरती है तुमसे, प्यार नहीं करती, और जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। एक औरत होने के नाते मैं उसके जज्बातों को समझ सकती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारे बीस्ट रूप को देखकर तुम्हें ठुकरा दिया था, वैसे ही वो भी कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर उसने प्यार किया भी तो उसमें जरूर कोई स्वार्थ होगा, बिना मतलब के तुमसे प्यार ये सोच भी मत। गुस्से में आस्तिक ने दीवार पर मुक्का मारा, उसकी उंगलियों से खून बहने लगा। वो चिल्लाया, बस बंद करो अपनी बकवास, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हारी तरह गोल्ड डिगर और गिरी हुई नहीं है। आस्तिक को घायल देखकर अमायरा डर जाती है, वो तुरंत अपना क्लच बैग उठाती है और तेजी से बाथरूम से बाहर भाग जाती है। आस्तिक बदहाल हो गया था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो जैसे तैसे बाथरूम से निकलता है, तभी दो महिलाएं उससे टकरा जाती हैं, उसके हाथों से खून बह रहा था। वो होटल से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है, साइड में खुली हुई वाइन की बोतल रखी होती है। आस्तिक की आंखें लाल थी, चेहरा निराश, उसे न रास्ते का पता था न मंजिल का, बस कानों में गूंज रही थी अमायरा की आवाज, इस दुनिया में कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। आहा आ आ आहा, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला।
आस्तिक को किसी चीज का होश नहीं था, एक हाथ में वाइन की बोतल थी और दूसरे हाथ से वो ड्राइव कर रहा था। उसका चेहरा गुस्से, हताशा, निराशा और नफरत से लाल हो चुका था। अमायरा के शब्दों ने उसे अंदर तक चोट पहुंचाई थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस वक्त खुद को कैसे संभाले। अमायरा की बातों की गूंज अब भी उसके कानों में जहर की तरह घुल रही थी। तुम जैसे इंसान से कौन प्यार करेगा? तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। कोई बेवकूफ ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तक खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। क्यों बेवजह दी ये सजा, क्यों ख्वाब देख के वो ले गया। जिए जो हम लगे सितम, अजाब ऐसे वो दे गया। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला।
आस्तिक की ड्राइविंग और ज्यादा रफ होती जा रही थी। उसने पूरी बोतल वाइन खत्म कर दी थी और अब दूसरी बोतल खोल ली थी। सड़कें पीछे छूटती जा रही थी और आस्तिक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने गाड़ी रोक दी। वो अपने ही बंगले के सामने खड़ा था। उसकी नज़र सामने गार्डन पर गई। रात के समय गार्डन में इमरजेंसी लाइट जल रही थी, जो हमेशा की तरह अब भी जल रही थी। उसी रोशनी में गार्डन के बीचों बीच उसे अरुणिमा एक बेंच पर बैठी दिखाई दी।
ढूंढता था एक पल में दिल जिसे ये सौ दफा, है सुबह नाराज उस बिन रूठे शामे दिन खफा। वो आई ना ले जाई ना, हाँ उसकी यादें जो यहाँ, ना रास्ता ना कुछ पता, मैं उसको ढूंढूंगा अब कहाँ।
अरुणिमा ने वही अपना पुराना प्लेन सूट पहन रखा था। चेहरे पर अब भी कोई मेकअप नहीं था, लेकिन उसकी मासूमियत ही उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। गार्डन के फूल तोड़कर उसने खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया था और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आस्तिक की लाल आंखें उसी को देख रही थी। वो पूरी तरह नशे में डूबा हुआ और बुरी हालत में था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर चकड़े हुए थे। अचानक उसने गाड़ी स्टार्ट की और उसे रिवर्स किया। जैसे जैसे वो गाड़ी पीछे ले जा रहा था, अरुणिमा उसकी नज़रों से दूर होती जा रही थी। वो अब भी नहीं जानती थी कि कुछ देर पहले आस्तिक उसी मेंशन के दरवाजे पर खड़ा था।
मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, पता चला के रलत लेके मैं पता निकला, पता चला के रलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला।
जैसे ही अरुणिमा ने हाल में लगे फूलदान में वो सारे फूल सजाए, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि कॉल उसके पापा की थी। हैरानी से उसने कॉल उठाया और कान से लगा लिया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर अरुणिमा पूरी तरह चौंक गई। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फोन रख दिया, लेकिन अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। अरुणिमा वहीं हाल में बैठ गई। उसे आस्तिक से बात करनी थी। वो वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। रात के 2 बज चुके थे और आस्तिक अब भी घर नहीं लौटा था। ये देखकर वो और भी घबरा गई थी कि इतनी रात तक आस्तिक आखिर कहाँ रह सकता है। हालांकि वो जानती थी कि देर रात तक बाहर रहना उसकी पुरानी आदतों में से एक है।